मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताई जाते भय अरहंता धीमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु में हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल ही सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोली भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने की प्रक्रिया पर जैसा आचार्य भगवंतों ने मार्गदर्शन दिया है उस पर विचार कर रहे हैं। हमारी अपनी कुछ मौलिकताएं हैं, यदि हम उन मौलिकताओं को ठीक ठीक बरकरार रख सकें तो यह अपने जीवन को अच्छा बनाने की दिशा में एक बहुत सशक्त कदम होगा। हमारी अपनी मौलिकता यह है कि हमें मन वाणी और शरीर तीनों की विशिष्ट सामर्थ्य मिली है। हमारा अपना निजी स्वभाव है वीतरागता। यदि हम अपने इन मन वाणी और शरीर को उस अपने स्वभाव की प्राप्ति में ही लगाए रखें तो इस मौलिकता से हम लाभ ले सकते हैं। पर हुआ यह है, हमारे साथ हमारी अपनी अज्ञानता और आसक्ति के चलते हम अपनी मौलिकता को भूल गए हैं। हम अपनी पहचान को भी निरंतर खो रहे हैं और इतना ही नहीं, हम विकृतियों की तरफ भी निरंतर बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें विचार करना चाहिए, जैसे नदी की धारा में बीच में कोई पत्थर डाल दे तो नदी की धारा कई छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है। और इतना ही नहीं, जो नदी की बहने की गति है वह भी अवरुद्ध होती है और उसके बहने से जो एक संगीत उत्पन्न हो रहा था वह भी नष्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन की धारा में अगर ये पत्थरों की तरह विकृतियां आ जाती हैं तो हमारे जीवन की धारा कई छोटी छोटी धाराओं में विभाजित होकर नष्ट हो जाती है। हम देख रहे हैं हमारे मन वाणी और शरीर को हम कितनी धाराओं में विभाजित कर चुके हैं और धीरे धीरे जो उनका सदुपयोग हमें कर लेना था उसको करने का हमारे पास अब समय ही नहीं बचा है। इतना ही नहीं, हमारे उस जीवन की धारा के प्रवाह में इन विकृतियों के अवरोधक आने से हमारी गति में भी धीमापन आ गया है। अपने को अच्छा बनाने की गति में धीमापन आया है, ये कह रहा हूं। और इतना ही नहीं, हमारे जीवन का जो एक संगीत था, हमारे जीवन की जो सरलता कोमलता का जो संगीत था, वो भी अब हमारे हाथ से स्लिप हो गया है। हमारे हाथ से ही हमने उसे खो दिया है। ये हमारी मौजूदा स्थिति है। हमें एक बार इस मौजूदा स्थिति पर विचार करके अपनी इन विकृतियों से बच करके अपनी प्रकृति को पुनः एक बार ध्यान में रखकर उसे संस्कारित करना चाहिए। और यदि इन तीनों बातों पर हम थोड़ा सा विचार करें, हमारी अपनी मौलिकता या हमारी अपनी प्रकृति, वर्तमान में जो आई हैं विकृतियां, और हम उनसे बच करके कैसे अपनी संस्कृति या कैसे अपने संस्कारों को सुरक्षित रख सकते हैं, अगर ये विचार हमारे जीवन में हम धीरे धीरे रोज लाएं, तो हमारा जीवन बहुत आसानी से अच्छा बन सकता है। जैसा हम चाहते हैं उतना अच्छा बन सकता है। एक बार किसी व्यक्ति को यात्रा करनी थी। यात्रा में जरूरी है कि भटक ना जाए, दिशा भ्रम ना हो जाए, ठीक अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इसके लिए उस व्यक्ति ने सोचा कि दिशा सूचक यंत्र एक कंपास उसे खरीद लेना चाहिए। और वो कंपास दिशा सूचक यंत्र जहां मिलते थे वहां पहुंचता है वो। और तरह तरह के कंपास उसके देखने में आते हैं। वो देखता है कि एक कंपास जब खोलता है तो एक तरफ से उसमें दिशा सूचक नीडिल दिखाई पड़ती है, लेकिन उसे ही जब दूसरी तरफ से खोलता है तो उसमें एक दर्पण दिखाई पड़ता है। बड़ा आश्चर्य होता है। वो पूछता है उससे कि भाई आप नीडिल बेचते हैं, कंपास बेचते हैं, लेकिन उसके साथ में इस दर्पण का क्या संबंध है? तो उसने कहा कि ऐसे कंपास मेरे पास बहुत थोड़े से हैं और ऐसे कंपास लेने आने वाले लोग भी बहुत थोड़े हैं। तो उसने कहा लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसमें कंपास के साथ साथ मिरर दर्पण लगाने की क्या जरूरत है? तो उसने जो जवाब दिया वो जवाब हमें भी अपने जीवन में याद रखना चाहिए। उसने कहा कि मैं ऐसे कंपास जिनमें कि दर्पण लगा है इसलिए बेचता हूं ताकि कहां भटके हैं यह तो मालूम पड़ जाएगा इस दिशा सूचक यंत्र से, लेकिन कौन भटका है ये कैसे मालूम पड़ेगा? भटका कौन है ये दर्पण बता सकेगा, और भटके कहां हैं ये दिशा सूचक यंत्र बता सकेगा। हम सबके साथ भी यही स्थिति है। हम यह स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हम भटके हुए हैं। सहसा कोई स्वीकार नहीं करेगा। सबको ये लगता है कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं एकदम ठीक दिशा में जा रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो एकदम ठीक कर रहा हूं। ये चीज बहुत बड़ी हमारे भीतर बाधा बनकर के खड़ी हुई है। हम अगर गलत दिशा में भी जा रहे हैं तब भी हम सहसा स्वीकार नहीं करते उस चीज को। बहुत मुश्किल होती है। तीन चीजें हमें अपनी इस विकृति से मुक्त होने के लिए, चाहे तो बहुत एप्लीकेबल है, बहुत प्रायोगिक है, चाहे तो कर सकते हैं। और अपनी प्रकृति से हम विकृतियों की तरफ ना जाकर अपनी संस्कृति की तरफ, अपने संस्कारों की तरफ जा सकते हैं, अगर इन तीन बातों का ध्यान रखें तो। पहली चीज, वचन हो लेकिन विवाद ना हो। आज हमारे पास वाणी की सामर्थ्य है, वचन है, लेकिन जो छोटी छोटी सी बातें विवचन विवाद और संघर्ष ही पैदा करते हैं। अगर मैं यहां से किसी स्थान पर जाने के बाबत उस स्थान की दूरी किसी से पूछूं, तो वह कहेगा महाराज यहां से तो 10 किलोमीटर होगा मुश्किल से वह स्थान जहां आप जाना चाह रहे हैं। अच्छा, बाजू में जो खड़ा हुआ है वो ऐसा सुनकर के चुप नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास भी वचन है। वो कहेगा जनाब कहां की बात कर रहे हैं आप, 10 किलोमीटर? अरे साहब हमारा रोज आने जाने का है, पड़ता है 8 ही पड़ता है, कुल 8 किलोमीटर पड़ता है। तीसरा वाला चुप नहीं बैठेगा, बोलेगा ऐसे कैसे महाराज को ऐसे बुद्धू बना रहे हो तुम लोग, मैं बता सकता हूं 12 किलोमीटर से कम नहीं पड़ेगा। अब साहब 8 10 और 12 मुझे ये नहीं मालूम कि कितने किलोमीटर है। अब 3 लोग हैं और आपस में उस एक वचन को लेकर के और संघर्ष की स्थिति बन गई। ये क्या चीज है, ये विकृति है, इस पर ध्यान नहीं जाता सहसा। वचन का ऐसा ही अभ्यास हमें है, हमारी कही बात रह जानी चाहिए, सही है या गलत है इसका विचार नहीं है, हमारी कही हुई बात जो हमारे मुंह से निकल गई। एक शिष्य को नहीं, कई शिष्यों को एक गुरु जी कुछ शिक्षा देना चाह रहे थे और उन्होंने शिक्षा से पहले कहा कि एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगा कि इस कमरे की लंबाई कितनी है, बता सकता है कोई? शिष्यों में से फट से एक ने कहा गुरुजी 20 फीट, दूसरे ने कहा ओ नो 19.5 फीट, तीसरे ने और कुछ, चौथे ने कुछ और, सब बोल चुके, एक चुपचाप बैठा है शिष्य। उससे पूछा कि आपको कुछ नहीं कहना, तो कहता आई डोंट नो। तो गुरुजी कहते यू आर राइट, इन सब में से सही कौन सा है? जिसने अपने अज्ञान को स्वीकार कर दिया कि मुझे नहीं मालूम, बाकी सबको बताने की उतावली है कि इतने किलोमीटर इतने इतने नापा किसी ने नहीं। ये बात बड़ी कहना चाहिए अपन की भीतर कमजोरी है। अगर आप मकान बनाना शुरू करें और वहां से कोई निकल रहा हो और आप उसे जयजनंद कर लें, वो खड़ा हो जाएगा और आपको मकान बनाने की क्या इंजीनियरिंग है वो बता देगा, भले उसने बी की डिग्री नहीं दी हो वो बता देगा। अगर आप किसी से जरा चर्चा करें कि साहब वो 2-3 दिन हो गए हैं सर्दी बड़ा परेशान कर रही, अरे साहब आप क्या बात कर रहे हैं, योगा करिएगा, योगा आप जरा डीप ब्रीदिंग करिएगा, फौरन डॉक्टर बन जाएगा वो। या फिर वो कहेगा अगर आयुर्वेद वाला है तो वो आयुर्वेद की दवाई बताने लगेगा, होम्योपैथ वाला है तो वो कहेगा साहब इस पे तो ये वाली दवाई चलती है, आप तो ले लो हमारी तो अनुभूत है वो। हर व्यक्ति इस तरह अज्ञान के साथ साथ ज्ञान होने का भ्रम पाल करके और अपने उन वचनों को व्यर्थ ही विवाद में ले जाने के लिए तैयार करता है। वचन इसलिए नहीं मिले थे, वचन सिर्फ इसलिए मिले थे कि मैं अपनी भावनाओं को, मैंने जो ठीक ठीक जाना है उससे दूसरे को बता सकूं, उसका मार्ग प्रदर्शित कर सकूं और स्वयं भी उन वचनों के माध्यम से जो दूसरे के द्वारा मुझे कहे जा रहे हैं उस ज्ञान को प्राप्त कर सकूं, उस सही दिशा को प्राप्त कर सकूं। ये हमारी अपनी संस्कृति की तरफ ले जाने के लिए वचन सहयोगी हो सकते हैं अगर उनके साथ विवाद ना हो। दूसरी चीज, हमें सोचने की शक्ति मिली है तो कहते हैं कि विचार, आग्रह हो अगर विचार के साथ तो वे विचार हमें सिर्फ विकृति की तरफ ले जाएंगे और आज विचारों का आग्रह अत्यंत है। हर व्यक्ति का अपना सोच है, एक ही चीज के बारे में हर व्यक्ति का अपना अपना मत है, कितनी मान्यताएं हैं, सच्चाई क्या है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरी अपनी मान्यता, मेरा अपना सोच, मेरा अपना विचार और फिर इतना ही नहीं उसका आग्रह कि यही सच है, इसलिए भी हम विकृतियों की तरफ बढ़ रहे हैं, संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमारे अपने विचारों में हम निराग्रही रहकर और सिर्फ विचारों से दूसरे को अवगत कराएं, अपने विचार दूसरे पर न थोपें, और उसे मुक्त रखें, सिर्फ विचार दें, वो उन विचारों के द्वारा और विचार करे और सच तक पहुंचे। विचार सिर्फ सत्य तक ले जाने के लिए हैं, विचार तो माइलस्टोन की तरह हैं, वे हमें सिर्फ गंतव्य का मार्गदर्शन करते हैं, और अगर हम माइलस्टोन को पकड़ करके बैठ जाएं तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही विचारों को पकड़ के बैठ जाएं तो हम उन विचारों से लाभ नहीं ले पाएंगे। हम निराग्रही होकर उन विचारों के माध्यम से अपने जीवन में क्या हम श्रेष्ठ प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त करने की कोशिश करें, ये दूसरा कदम होना चाहिए। और तीसरी चीज, व्यवहार हो लेकिन असंतुलन ना हो, व्यवहार हो अत्यंत संतुलित हो, ये हमें सीख लेना चाहिए। तीनों चीजों का सुबह से शाम तक उपयोग करते हैं, वचन बोलते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, अपना दूसरे के साथ व्यवहार भी व्यक्त होता है। और अगर ये तीनों ही जरा सा व्यवस्थित हो जाएं, तो फिर देखिएगा कि विकृतियों को कोई अवसर ही नहीं हमारे पास आने का, बल्कि हमारी प्रकृति के अनुरूप हम धीरे धीरे अपने को परिष्कृत करके और अत्यंत संस्कारवान होकर के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जीवन को अच्छा बनाना यानी संस्कारित करना, परिमार्जित करना, जहां जो कुछ भी वेस्ट है, जहां जो कुछ भी हटाने योग्य है उसे हटाकर तराश करके एक अपने आप को बहुत सुंदर सा शेप देना। जीवन के धड़कन की तारों को कुछ इस तरह से साधना कि उसमें से संगीत निकल सके कोलाहल की जगह पर। अभी तो जीवन में हमारे संघर्ष के कारण कोलाहल की है, उससे कोई संगीत नहीं निकल पाता है। अगर थोड़ा सा हम प्रयत्न करें अपने व्यवहार को संतुलित बनाने का, हमारे व्यवहार का असंतुलन हमारे ही जीवन को विकृतियों की तरफ ले जाता है। संतुलन के मायने क्या है? बहुत आसान सी चीज है। मैं अपने घर में बिना नौकर के अपना काम नहीं कर सकता, मुझे एक नौकर चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इससे नौकर को भी रोजगार मिलेगा, उसे भी लाभ होगा, ये तो आपका विचार बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ मेरे व्यवहार में असंतुलन ये आ जाता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा नौकर, मैं उससे ज्यादा से ज्यादा काम लूं, लेकिन उसे मुझे मेहनताना कम देना पड़े, यह मेरा असंतुलन। और इतना ही नहीं, यह मेरा असंतुलित व्यवहार उसे भी असंतुलित जीवन के लिए प्रेरणा देता है, और उसके मन में क्या विचार आता है, यह मेरा मालिक, मैं इसकी सेवा करूं। यह था संतुलित व्यवहार, लेकिन अब उसे लगता है कि मुझे इसका काम कम से कम करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा इससे मुझे मेहनताना मिल सके। दुकानदार और ग्राहक के बीच में जो एक व्यवहार का संतुलन होना चाहिए था वो भी गड़बड़ा गया है। मैं इस ग्राहक से अधिक लूट सकूं और हल्के से हल्की चीज इसे बेच सकूं, और ग्राहक के मन में है कि मैं किस तरह से दुकानदार से कम में अच्छी से अच्छी चीज ले सकूं, और एक संघर्ष ये व्यवहार के असंतुलन की वजह से। ऐसे ही ये तो बाहर चले गए अपन, ऐसे ही समाज में आ जाएं, ऐसे ही परिवार में आ जाएं, तो फिर देखें कि यह विचार का असंतुलन कितना संघर्ष और कितनी विकृतियां पैदा करता है। एक मां अपने बेटे से अपेक्षाएं रखती है कि वो बहुत अच्छा बने, भला बने, लेकिन यह उसके विचारों का आग्रह और स्वयं के विचार का असंतुलन उसके बेटे को क्या दिशा दे पाता है, दे पाता है क्या? अपेक्षा तो बहुत रखते हैं हम, लेकिन हमारे अपने जीवन से, हमारे अपने व्यवहार से उन्हें कोई संदेश मिलता है क्या? परस्परता का जो बोध है वो जब तक नहीं होगा तब तक हमारे व्यवहार में संतुलन नहीं आएगा, और जब तक हमारे व्यवहार में संतुलन नहीं आएगा तब तक हम दूसरे को जीवन संतुलित बनाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं दे सकते। बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को पहचाने। हम अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं और हम स्वयं सुबह से शाम तक और अपने आराम तलबी और सुख सुविधा में लगे रहें और चाहें कि उसे हम संस्कारवान बनाएं, ये कितना असंतुलित हमारा व्यवहार है। ये कह रहा हूं परिवार में, हमें अपने असंतुलन की बात नहीं दिखाई पड़ती, दूसरा अपना व्यवहार सुधारे ये हमें उससे अपेक्षा होती है, और हमारा अपना व्यवहार कैसा है इसके प्रति हम चिंतित नहीं है। एक बेटा, कहीं से उसको चमकीला पत्थर मिल गया था तो उससे खेलता हुआ रास्ते में जा रहा था, एक हीरे जवाहरात का पार्क ही वहां से निकला और वो समझ गया कि ये चमकीला पत्थर सिर्फ चमकीला पत्थर नहीं, वो तो कीमती पत्थर है, जेम स्टोन है। और उसने मालूम उससे क्या कहा कि बेचोगे इसको? उसने कहा क्या बेचने लायक चीज है क्या? बोले हाँ बहुत कीमती है। तो कितने में बेच, कितने लोगे तुम? बोले तुम ही बताओ कितने में दोगे। अब उसने तो एक रुपए तक नहीं देखा था इकट्ठा, तो उसने कहा कि एक रुपए दे सकते क्या? अब जो पार्की है उसको उसकी अज्ञानता का लाभ उठाने का मन हुआ। अपन को भी होता है, ऐसा नहीं समझना कि अपन को नहीं होता, ये उदाहरण अपने पर पूरा घटित होता है। दूसरे को जरा भी सीधा सच्चा और सरल जैसे ही अपन पाते हैं तो उसी के साथ छल कपट करने का मन होने लगता है, और दूसरे को अगर हम छल कपट पाते हुए देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कैसे अपने को प्रोटेक्ट करें, कैसे अपने को संभालें। अब उसकी अज्ञानता का लाभ उठाने के लिए वो उससे क्या कहता, आठ आने पैसे में दोगे क्या? कहता क्या बेचना, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे बेचना बेचना नहीं है, क्या आठ आने पैसे, क्या चार आने पैसे, मुझे बेचने नहीं है। तो वो हीरे का पार्क ही सोचता है कि जाएगा कहां, बेचेगा तो ही, आठ आने पैसे कम थोड़ी होते हैं। उतने में वो सोचता है कि ये अपने आप मुझे बुलाने आएगा, आगे बढ़ जाता है, और उतने पीछे से एक और हीरे का पार्क ही आता। वो उस हीरे को देखकर कहता है कि बेटे बेचोगे क्या? बोलता वो एक जा रहा है, वो कह रहे थे कि बेचोगे क्या, मैंने उनसे कहा कि एक रुपए में बेच सकता हूं, वो कहते आठ आने बेच दो। अरे इसमें क्या बेचने बेचने वाली चीज है, मैं खेलूंगा इससे? उसने कहा कि सुनो मैं तुम्हें ऐसे कई एक रुपए दे सकता हूं तुम बेचना चाहो तो। वो कहता कई एक रुपए, फिर भी कितने? बोले हजार रुपए दे सकता हूं। चमत्कृत हो जाता वो और उसके हाथ में दे देता हीरा। इतना देख करके वो जो पारखी था पहले वाला, वो दौड़ के आता है, वो कहता कि तुम ठगाए गए, लाखों का हीरा हजार में बेच दिया। अब जोर से हंसता है वो बच्चा कि मैं तो अज्ञानतावश ठगाया गया, तुम तो जानते थे एक रुपए में बेच रहा था तो आठ आने कह रहे थे, मेरे से कह रहे कि हजार में बेच दिया लाखों की चीज। देख रहे हैं आप, दूसरे का अज्ञान दिखाई पड़ता है, दूसरे के विचार का असंतुलन दिखाई पड़ता है, अपने अज्ञानता और अपना असंतुलन नहीं दिखाई पड़ता। अगर यहां से हम शुरू करें और अपने आप को संतुलित कर लेवें, अपने व्यवहार को, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्रों पर हो, तो ये व्यवहार का संतुलन यानी परस्परता का बोध इतना ही है और कुछ नहीं। व्यवहार का संतुलन यानी परस्परता का बोध, जब सब लोग एक साथ जी रहे हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना, बस इतना ही बहुत हो जाएगा इतने में भी। पर ऐसा हो नहीं पाता है, ना परिवार में हो पाता है, ना समाज में हो पाता, ना धार्मिक क्षेत्रों पर हो पाता है। हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें और इस बात का ध्यान रख लेवें। चाहते तो हम ये हैं कि हमें सबके हृदय में जगह मिले, लेकिन ये आधा अधूरा मामला है। हमारे हृदय में सबके लिए जगह हो तो सबके हृदय में हमारे लिए भी जगह हो सकती है, और फिर देखिएगा कि कैसे हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जीवन को अच्छा बनाने में मदद करने वाले बन सकते हैं। अभी अभी तो हम एक दूसरे के जीवन में मदद करने वाले नहीं हैं, एक दूसरे के जीवन में बाधा डालने वाले हैं। अभी तो हमारा व्यवहार दूसरे को आगे बढ़ते देख करके और विचलित हो जाता है, लगता है कि ये कैसे आगे बढ़ गया, मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। और अगर हम इस विकृति को दूर करके और थोड़ा सा अपने व्यवहार में संतुलन लाएं कि नहीं, कोई अगर आगे बढ़ता है तो वो मुझे प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की, वो मुझे मार्ग प्रदर्शित कर रहा है, आगे बढ़कर के वो मेरा साहस उत्पन्न कर रहा है। ऐसा यदि भाव हमारे मन में आ जाए तो हमारा जीवन अपने आप संस्कारित होना शुरू होगा, हमारे जीवन से विकृतियां हटनी शुरू होंगी। दो ही सूत्र हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं सारे संसार में, एको हम बहुश्यामा, एको हम द्वितीयो नास्ति है। प्रसिद्ध सूत्र हैं ये भारतीय संस्कृति में। एको हम बहुश्यामा, व्याख्या ये की जाती है कि एक ही मैं सब में दिखाई पड़ता हूं। दूसरी व्याख्या बहुत सीधी सी है कि एक जैसी आत्मा मेरे में है वैसी ही सब में है। और एको हम द्वितीयो नास्ति, एक जैसा मैं हूं मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं यूनिक हूं अपने आप में, मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। दो लोग दो आत्माएं एक जैसी नहीं हो सकती, दोनों के अपने अपने सोच, दोनों के अपने अपने लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग अलग होंगे। जब ऐसी स्थिति है तब फिर हमारा आग्रह क्यों होना चाहिए कि एक जैसा ही हो। हम क्यों कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को आपस में एक दूसरे से कि वो देखो वो तुमसे कितना होशियार, वो तुम कितने डल। फिर हम क्यों कंपेयर करते हैं धार्मिक स्थलों पर भी, क्यों हम कंपेयर करते हैं समाज में भी, ये हमारे व्यवहार का संतुलन कहां से आया? इसीलिए कि या तो हम ये सोचते कि एक आत्मा ही सबके भीतर है, तब इस तरह की बात आने से हमारे अंदर सबके प्रति समता का भाव आता, और या तो हम ये सोचते कि मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी, दूसरे की अपनी इंडिविजुअलिटी, तो सबका अपना अपना स्वभाव, सब अपने अपने स्वभाव में रहें, सब अपने अपने कल्याण के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। ऐसा विचार करने से भी मन में समता आएगी, मन में बड़ा संतोष होगा, जीवन परिष्कृत होगा, जीवन अच्छा होगा। दो छोटी छोटी सी घटनाएं आपको इसके लिए सुनाता हूं, शायद लगे कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं। इसी चीज को दूसरे ढंग से भी अपन चाहें तो कह सकते हैं कि एक मैं इतना लघु होकर के जीवन जीऊं कि सबके हृदय में मेरे लिए जगह बन जाए। लघु होकर के जीना पड़ेगा, क्योंकि आप ही उसके जीवन में सारी जगह घेर लेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। नहीं, मेरे लिए भी दूसरे के हृदय में थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं बहुत छोटा हूं। और दूसरी चीज, मेरा हृदय इतना बड़ा हो जाए कि उसमें सभी के लिए जगह हो जाए। मैं थोड़ी सी जगह घेरूं लेकिन मेरे हृदय में इतनी जगह हो कि सब उसमें अपने लिए जगह पा सके। हो सकता है ऐसा? हो तो सकता है, देते तो हैं। जहां जहां अपना स्वार्थ सत्ता है वहां तो अपन जगह देते हैं। अगर अपना कोई यहीं पर मित्र आ जावे और इतनी दूर से दिख जावे, आ जाओ, हम थोड़ा खिसक जाते हैं, हम खिसक जाते हैं। और वैसे तो बहुत लोग कहां कहां किस किस के लिए खिसकेंगे। सोच है, अपना सोच है। ये जो परायेपन का भाव है, एक दार्शनिक को लिखना पड़ा कि अदर इज द हेल्प, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर ले, वो कहना क्या चाह रहा है, अदरनेस इज द हेल, ये जो दूसरेपन का भाव है वो ही नरक है और कुछ भी नहीं है। कहते जरूर हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, मेरे समान ही सब जीवों में वही अनंत सामर्थ्य है, भगवत्ता है, ऐसा कहते जरूर हैं, लेकिन भगवत्ता दिखती कहां है। जब विनोवा की मां घर में आए हुए एक अतिथि बच्चे को प्रेम से पंखा झलकर गरम गरम रोटी खिला रही थी, तब 11 वर्ष के विनोबा के मन में आया कि मैं तो अपनी मां का बेटा और मुझे तो कभी ऐसा नहीं खिलाती, और इस अनजान अतिथि को इतने प्यार से खिला रही है। तो मां से कहा कि मां, तुम हमेशा कहा करती हो कि सबके भीतर ईश्वर है, अगर सबके भीतर ईश्वर है तो फिर मेरे भीतर भी है और इस जो आया अतिथि है इसके भीतर ही है, तब फिर तुम दोनों के भीतर ईश्वर जान करके भी और अलग अलग व्यवहार क्यों करती हो मां। ज्ञानवान तो थे वो 11 वर्ष की उम्र में भी, तब ऐसी बात आज के बच्चे अपनी माँ से ऐसी बात करेगा क्या? वो तो ये कहेगा कि सब देख लिया, माँ का व्यवहार देखने तो, थोड़ा बड़ा होने दो, फिर बाद में माँ वहां सब छोड़ देंगे। ऐसे तो अब ये सोच का ही तो इतना ही से तो काम है। वो कैसे सोच रहा है कि माँ मुझे बताओ, तुम कहती हो हमेशा कि सबके भीतर ईश्वर है, तो मेरे भीतर भी ईश्वर है और इसके भीतर भी, फिर तुम्हारे व्यवहार में ये अंतर आने का कारण क्या है? तो माँ कहती है इसमें मेरी ही कमी है बेटे, अभी मुझे इस अतिथि के भीतर तो देवता नजर आता है, लेकिन तुम्हारे भीतर अपना बेटा होने का मोह मेरा जाता नहीं है। इतनी बड़ी बात आज कह सकते हैं अपन? आती नहीं मन में इस तरह की बात। सबके प्रति वैसा ही भाव जो हम अपने के प्रति रखते हैं, अपनों के प्रति रखते हैं, आ सकता है क्या? प्रयत्न तो किया जा सकता है। और उसका 75% नहीं बना, वो उदास है, मेरे से कह भी नहीं रहा। मैंने ही पूछ लिया कितने आ गए बेटे रिजल्ट आ गया, तो कहता कि 1 नंबर कम आया है। ये नहीं बताया कितने परसेंट, उसे मालूम है 1 नंबर कम आने का मतलब 75 से 1 नंबर कम। तो मैंने कहा इसमें क्या बात है, भरो फॉर्म भरो और तुम्हें इस बात का सम्मान मिलेगा। और जब उसे सम्मान मिल रहा है तब प्रसन्नता तो होती ही है। उसने उसके बाद आकर के कहा कि उन क्षणों में आपकी बात मुझे समझ में आई, मुझे सम्मानित होते देख करके मेरे परिवारजन प्रसन्न हो तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्रसन्न हैं जबकि आप मेरे कौन हैं, फिर भी आप प्रसन्न हैं। आप हर बच्चे के आगे बढ़ने में प्रसन्न हैं, हम तो अपने बच्चों के आगे बढ़ने में प्रसन्न होते हैं, ये विद्या हमें भी सिखा दें आप। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये विद्या हम नहीं सीख सकते सब? क्या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा परस्परता का बोध हमारे भीतर जागृत नहीं हो सकता? हम तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कौन है, किसका है, कैसा है। नहीं, यह भी उतना ही सामर्थ्यवान है जितना कि मैं हूं, मेरी आत्मा में भी उतनी ही सामर्थ्य है जितनी इसके पास। ऐसा भाव आ सकता है क्या? वैसे कठिन तो कुछ नहीं है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। मैं व्याख्या करते समय हो सकता है कठिनाई से व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन 2 छोटे से उदाहरण कहने की बात मैंने आपसे कही थी वो कह देता हूं। 3 मिनट में तो नहीं हो पाएंगे, बची तो 3 मिनट हैं, 5-8 मिनट तो लग जाएंगे, देखते हैं। एक सेठ के 2 बेटे थे और उनका मरण निकट आ गया। मरते समय अपने बेटों को कोई एक बहुत अच्छी बात कह करके जाने का मन होता है पिता का, भले ही बेटों ने जीवन भर पिता के लिए कुछ भी ना किया हो, तब भी पिता का मन होता है कि वे उन्हें भले बुरे का ज्ञान करा सकें जीवन के मरण के अंतिम क्षणों में भी। और उसी उद्देश्य से दोनों पुत्रों को पास में बुलाकर इतना ही कहा उस पिता ने कि बेटे मेरा जीवन तो अब समाप्त होता है, तुम लोग सारे इस देश में अपने लिए हर जगह कोठी बनवाना। बात इतनी सी कही कि अपने लिए हर जगह कोठी बनवाना, हो सके तो, मेरा ऐसा मन है। अब पिता के मरण के समय कही गई बात में तो बहुत वजन होता है। दोनों ने पिता के मरण के बाद तय किया, बड़े भाई से पहले छोटे भाई ने कहा कि आप बड़े हैं, आप शुरू करें। उन्होंने कहा ठीक है, और कोठियां बनना शुरू हो गई। पिता क्या कह गए हैं कि सारे देश में जगह जगह अपनी कोठियां बनवाना। अब लेकिन कितनी बनवाएंगे, हर शहर में एक एक भी बनवाओ तो इतने सारे शहर हैं, इतने सारे गांव हैं, और पैसा तो खत्म हो गया। छोटे भाई के पास आके बड़े भाई ने कहा कि बड़े भाई, भाई छोटे भाई, कोठियां तो पिता के कहने के मुताबिक पूरी नहीं बन पाई, तुम्हारे पास कुछ धन पैसा हो तो उससे बनाते हैं। बोले कोठियां तो बन गई भाई, अरे तुमने मेरे से कहा भी नहीं कि कोठियां बन गई, सारे मैं तो कोठियां बनवा ही नहीं पाया पूरी जगह पर, तुमने कैसे बनवा ली पूरे में? इतना पैसा था तुम्हारे पास? पिता इतना छोड़ के गए थे क्या? हम दोनों को बराबर बराबर देके गए थे। तो उसने कहा कि अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो क्या तुमने वहां भी कोठी बनवाई जहां मैंने बनवाई? तब तो फिर डबल डबल बनवाने का पैसा खर्च हुआ होगा। उसने कहा आप चल के देख लें, जहां भी चलना चाहें वहां चल के देख लें। और छोटे भाई के साथ बड़े भाई पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां उन्होंने कोठी नहीं बनवाई थी, और जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जो भी उन्हें देखता है वो फौरन दौड़ करके पहुंचता, छोटे भाई छोटे भाई आप कब आए? आपने खबर भी नहीं दी आने की, और देखिएगा इस बार आप आए हैं तो मेरे घर में ही रहेंगे आप और किसी के नहीं जाएंगे, इस बार तो आपको मेरी ही सेवाएं स्वीकार करनी पड़ेंगी। वो उस अपनी तरफ से कह रहे हैं, वो इधर अपनी तरफ से, और आपकी ही कोठी है, आपको अपनी कोठी में ही जाना है। अब बड़े भाई दंग हैं कि 50 लोग कह रहे हैं कि आपकी ही कोठी है, मेरा क्या है, आपको मेरे यहां इस बार रुकना है, ये क्या चीज है? सब में कोठियां ईंट चूने से ही बन सकती हैं, और सब में कोठियां अपने प्रेम से भी बन सकती हैं। पिता तो कह के गए थे कि सब जगह अपनी कोठी बनवाना, यानी सब जगह अपने लिए थोड़ी सी जगह पाने के लिए इतना पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना, इतने विनम्र होकर के, इतने लघु होकर के, छोटे होकर के, और सबके हृदय में अपने लिए जगह प्राप्त कर लेना, इतना ही तो था। कौन नहीं चाहता? अपन नहीं चाहते क्या? अपन आज अगर मैड्रास जाना चाहें तो सबसे पहले क्या खोजते हैं? वहां कोई अपना है कि नहीं, बोलो, खोजते हैं कि नहीं? कहीं भी जाते हैं, किसी भी अननोन जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या मन में आता है? अरे अपन जा तो रहे हैं, वहां अपना कोई है कि नहीं? तो क्यों नहीं अपने अपने जीवन में एक प्रयत्न करें कि जहां भी जाएं, जैसे कि राम तीर्थ विदेश पहुंचते हैं और जैसे ही उतरते हैं नीचे एरोप्लेन से, एक नजर ऐसे डालते हैं, कौन आएगा उन्हें लेने के लिए, कौन है वहां परिचित? एक विदेशी उनसे पूछ लेता है, थोड़ी देर जब उनको नजर दौड़ाते देखता है कि इनको लेने कोई नहीं आया, तो पूछता है कि क्या यहां पर आपका कोई परिचित मित्र नहीं है? इतना पूछते ही साथ राम तीर्थ उसके कंधे पर हाथ रख के कहते, आप ही तो मेरे परिचित और आप ही तो मेरे मित्र हैं। और उसके बाद से वो इनका इतना इतना पक्का मित्र हो गया कि जीवन भर साथ निभाया उसने। है ऐसा अपना हृदय कि सहज भाव से हम स्वीकार कर सकें। धोखा बहुत खाना पड़ेगा इसमें, हाँ, ये सावधानी रखना। दूसरा हमें मित्र माने या ना माने ये उसकी चॉइस है, हमारे मन में उसके प्रति मित्रता का भाव है, इतना ही करना। इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो संसार जीने नहीं देगा, ये विद्या नहीं सिखा रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि दूसरा मुझे चाहे जो मानता रहे, मेरा तो दूसरे के प्रति मित्रता का ही भाव, मैं तो सदा उसके उपकार का ही भाव रखूंगा, वो मेरा भले ही अपकार करे, इतना ही कह रहा हूं। इतना नहीं कह रहा हूं कि कल से आप फ्रेंडशिप करना शुरू करें, मेरा आशय समझिएगा, आशा यह है कि मेरे हृदय में सबके लिए ऐसा प्रेम हो। आज के समय में नहीं तो इसकी व्याख्या लोग अलग अलग से कर लेंगे। आपने कहा सर सबसे प्रेम होना चाहिए, तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हम पहले से ही करते थे, और हमने तो ये विचार भी कर लिया है कि जिससे हमारा प्रेम है उसी के साथ जीवन बिताएंगे। अब आप फिर इसमें कैसे रोक सकते? आप ही तो प्रवचन में कह रहे थे कि सबसे प्रेम होना चाहिए। हाँ, ऐसा अर्थ मत ले लेना आप, जिस ऊंचाई से मैं कह रहा हूं उस ऊंचाई पर खड़े होकर के आप देखेंगे कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव है, किसी का मेरे द्वारा अपकार ना हो, मैं अपना जीवन इस तरह से जीऊं, सबके हृदय में मेरे लिए स्थान बनाया है मैंने अपने प्रेम से। और दूसरा उदाहरण, इतना तो काम कर लिया कि सबके हृदय में जगह पा ली, लेकिन अपने हृदय में भी तो सबको जगह देनी पड़ेगी। एक छोटी सी घटना है, शायद आपको याद आ जाए, पहले भी कहीं सुनी हो पढ़ी हो। एक झोपड़ी में एक वृद्ध और वृद्धा अपना शेष जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वो झोपड़ी शहर से बाहर है, वहां बहुत ही कम कोई पहुंचता है, कौन जाएगा झोपड़ी में? कोई नहीं रहना चाहेगा झोपड़ी में। आप बताइए, आप रहना चाहेंगे क्या? नहीं, आप फौरन कह देंगे। अब क्या हुआ कि एक दिन आंधी पानी तूफान आया और कुछ लोग उसी रास्ते से शहर में आ रहे थे, और अब शहर में पहुंचना मुश्किल है इतने आंधी पानी तूफान में। तब तो थोड़ी सी जगह चाहिए, रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह। अब नहीं दिखाई पड़ रहा है कि झोपड़ी है कि महल है। हाँ, अब झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया कि थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, बाहर आंधी पानी तूफान बहुत है। और वे दोनों वृद्ध और वृद्धा आराम से लेटे हुए थे, झोपड़ी में उतनी जगह थी, उतनी बनाई थी उन्होंने लेटने लायक। अब जैसे ही उस वृद्ध ने अपनी जीवन साथी से कहा कि दरवाजा खोल दो, तो जीवन साथी बोलती है कि दो लोग के लेटने की तो मुश्किल जगह है इसमें, और दो और आ जाएंगे तो कहां कैसे पूरा पड़ेगा। तो मालूम वो वृद्ध क्या कहता है कि तुम मेरे साथ जीवन भर रहकर कि मुझे नहीं समझ पाई। अरे इसमें क्या है, दो लोग जितनी जगह में लेट करके रात बिता सकते हैं, उतने में चार लोग बैठ के भी तो रात बिता सकते हैं, खोल दो दरवाजा। खोल दिया दरवाजा, अब चारों लोग बैठ करके रात बिता रहे हैं। लेकिन इतने में फिर से किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया कि भाई हम आंधी पानी तूफान में बाहर भीग रहे हैं, थोड़ी सी जगह हो तो हमें दे दें। अब वृद्ध ने इशारा किया उन दो लोगों को जो अभी आए थे, जिन्हें जगह दी थी, कि दरवाजा खोल दो। तो मालूम वो क्या कहते हैं, जगह कहां है यहां पर? नहीं कहते हैं, जिनको जगह मिल जाती है उनके मन में भी आता है किसी और को देने के पहले की जगह कहां। वृद्ध व्यक्ति क्या जवाब देता है कि सुनो, जहां पर चार लोग बैठ के रात बिता सकते हैं, वहां छह लोग खड़े होके भी तो रात बिता सकते हैं, तुम दरवाजा खोल दो। अब उन लोगों ने बहुत मुश्किल से खोला दरवाजा, तो दो लोग और आ गए, अब छह लोग खड़े हुए हैं। अब गुंजाइश नहीं है, लेकिन गुंजाइश बाहर नहीं होती, गुंजाइश तो भीतर होनी चाहिए। और जैसे ही अब की बार दरवाजा खटखटाया गया, उस पर धक्का दिया गया, तो पांच लोगों के चेहरे पर शिकन आ गई, एक को छोड़ करके। अपन सब में से भी किसी एक को छोड़ करके आती होगी, भगवान को छोड़ करके ना, अपन सबके तो आई जाएगी शिकन की जगह है ही नहीं विकार में। अब वृद्ध व्यक्ति जिसके चेहरे पर शिकन नहीं आई है, वो कह रहा है कि देखना कौन है बाहर आंधी पानी तूफान में, कौन भीग रहा है। तो खोला नहीं उन लोगों ने, झांक करके वो झिरी होती उसमें से देखा, उन्होंने कहा कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है, धक्का तो दिया है, कोई नहीं का मतलब कोई मनुष्य नहीं है, वहां तो एक गधा खड़ा हुआ है। उस वृद्ध ने कहा कि वह भी मेरे दरवाजे पर अगर जगह पाने आया है तो उसे भी जगह मिलेगी, मैं बाहर खड़े रह जाऊंगा लेकिन उसे जगह दूंगा। पर कोई तैयार नहीं हुआ खोलने के लिए, तब वृद्ध ने जो बात कही कि खोल दो दरवाजा, ये गरीब आदमी की झोपड़ी है जहां गधे के साथ भी आदमी की तरह व्यवहार किया जाता है, ये किसी बड़े आदमी की हवेली नहीं है जहां आदमी के साथ भी गधे की तरह व्यवहार किया जाता है। आ गया समझ में? आता तो सब समझ में है, लेकिन जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ जागृत करना है, बस इतना सा करना है। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके नहीं आता समझ में, अपन तो सौभाग्यशाली हैं कि समझ में तो आता है, कर नहीं पाते हैं, ये बिल्कुल जुदी बात है। जानते हैं, समझते हैं, दिल में भाव भी आता है कि कर लूं ऐसा, लेकिन संस्कार इतने प्रबल हैं, पुरुषार्थ की इतनी कमी है, वातावरण इतना प्रतिकूल है कि चाह कर भी हम नहीं कर पाते। पर एक भावना यदि हमारे भीतर ये जागृत हो जावे कि मैं अपने जीवन में ऐसा कोई क्षण इस तरह भी व्यतीत करूंगा जिसमें कि भले ही किसी को जगह नहीं दे सकूं लेकिन मेरे हृदय में सब जगह पा सकें, ऐसी भावना तो भाई सकूंगा। क्या इतना इतना भी नहीं कर सकते अपन? नहीं दे पाएंगे जगह किसी को, नहीं परस्परता का बोध हमारे भीतर पूरी तरह से आ पाएगा, लेकिन परस्परता का भाव तो हमारे भीतर जागृत हो ही सकता है। इस तरह यदि हम चाहें तो इन छोटी छोटी सी बातों से, तीन ही बातें हैं, वचन बोलते समय विवाद होने लगे तो मैं वचनों को समेट लूं, अपने विचार प्रकट करते समय आग्रह आने लगे तो अपने विचारों को निराग्रही बनाऊं, परस्परता के बोध से विमुख होकर के व्यवहार में अगर असंतुलन आने लगे तो फौरन अपने व्यवहार को संभाल लूं कि नहीं, मेरा व्यवहार तो दूसरे के प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत मैत्रीपूर्ण ही होना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरे व्यवहार में कभी कभी कठोरता आ जाती है, मेरे व्यवहार में कभी कभी जो है शत्रुता का भाव आ जाता है, मैं इसे कैसे घटाऊं? दिन भर में मैं लोगों के साथ शत्रुता का व्यवहार कम करूं, दिन भर में मैं लोगों के साथ मित्रता का ज्यादा व्यवहार करूं, दिन भर में मैं लोगों के साथ कोमलता से ज्यादा पेश आऊं, कठोरता को कम करूं। क्या ऐसा छोटा छोटा अभ्यास नहीं कर सकते अपन? व्यवहार में सुधारना ही तो है। अगर इस तरह हम अपने व्यवहार को संतुलित बनाना शुरू करें तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। इसी भावना के साथ और विशेष क्या कहूं, इसके बाद फिर अपन नमोकार मंत्र कहां कब एक साथ ऐसे ही मिल बैठ करके करेंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा, पर हम भावना भाते रहें कि हमारे जीवन में ऐसा अवसर हमेशा हमें मिलता रहे कि हम एक साथ बैठ करके और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का मार्गदर्शन लेते रहें। इसी भावना के साथ अपन आज नमोकार करते हैं।
सिद्धानो
लोग उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमो चत्ताविशरणं पव्वजामि अरिहंते शरणं पव्वजामि सिद्धे शरणं पव्वजामि सावु शरणं पव्वजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पव्वजामि धम्मं शरणं पव्वजामि
बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा देतो दो उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्ग कई भवन मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे
पूज्य 108 मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य 108
राजा ने तत्काल आदेश दिया दो विद्याधाम के लिए और वे जाते हैं तो जब द्रौपदी के महल में जाते हैं तो सोचते हैं कि इनको ये तो महासती है इनके लिए अपन किस प्रकार हाथ लगा सकते नहीं लगा सकते तो उनकी सैया सहित उठाकर सैया जिसपे सोती थी बड़ी सैया तक उठाई कितना महत्व है शील का बतलाइए द्रौपदी के लिए हाथ नहीं लगा सके वे विद्या है लोग भी सैया को उठा लिया या सारी चौकी उठा ली और चले गए अब तक जाके सुजा के अमर कंकापुरी नगरी में राजा के महल में रख दी। ये क्या है यहाँ तो सती है और इतना प्रभाव है लेकिन ये उफान क्यों आ रहा है कर्ण का एक कर्ण का उफान क्यों आ रहा है जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा ये किसी को नहीं छोड़ता है कीर्तंकर भी नहीं बचे अंतराय फल पाना से मृत्यु यदि हो जाए जगत में अशुभ कर्म की आने से हाँ अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो घर का भाई करोटा काट देता है ऐसा अशुभ कर्म का उदय था उस दिन और द्रौपदी प्रातकाल उठती है तो क्या देखती है कि बड़े बड़े महल मकान है क्यों पांच से धनुष के आदमों के रहने के लिए तो उतने ऊंचे मकान होंगे महल और जब आदमों को देखती तो बड़ी बड़ी काया के आदमी हम कहां आ गए विचार करती है कि नहीं हम अबे हमारी नींद पूरी नहीं भाई अबे हम ये सपना देख रहे हैं द्रौपदी ऐसी अचंभे में पड़ जाती है, फिर वो सैया पर बैठ जाती है। तो राजा छुपा छुपा खड़ा खड़ा कह रहा है देखकर द्रौपदी का रूप कि हे द्रौपदी तुम भूली हो, तुम्हारी नींद तो भग्न हो चुकी है, यह तो अमर कंकापुरी नगरी है, हम तुम्हारे लिए उठा कर ले आए, अब हम तुमको पटरानी पर दे देंगे। अरे ये कौन है? द्रौपदी कहती है कौन हो तुम राजन, तुम किस प्रकार उठा के ले आए, किसके कहे से उठा के ले आए, हमने तुम्हारा क्या कसूर किया जो तुमने हमारे पति से छुड़ाया? हमने कोई कसूर तो नहीं किया तुम्हारा, हमारे पति से तुमने क्यों छुड़ा दिया, ऐसी चोरी क्यों की तुमने? राजा कुछ नहीं सुनता है। जब जिसकी बुद्धि बेकार हो जाती है, जैसी रावण की बुद्धि बेकार हो गई थी, उसको मना मना उसके भाई बंधु सब हार चुके थे, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट जिसकी हो जाती है, राजा कहता है कि आपकी बातें हमको कुछ नहीं सुनना, आप तो महलों में आराम से रहो और हम तुमको पटरानी पर दे देंगे। द्रौपदी ने कहा हे राजन सुनो, तुम हमारे तरफ हाथ बढ़ाओगे तो भस्म हो जाओगे, याद रखो मैं मेरे पति आएंगे अवश्य आएंगे, मेरे लिए विश्वास है। अरे रानी मानो कैसे आएंगे, समुद्र तो बीच में पड़ा है, वे तो भूमि गोचरी है, वे कैसे आएंगे? द्रौपदी कह रही कहती है कि मेरे लिए विश्वास है, मेरे ऊपर विश्वास है कि मेरे शीर का कोई बिगाड़ने वाला नहीं है और मेरे शीर के कारण मेरे पति अवश्य ये समुद्र तैर कर आ सकती है, ऐसा शीर होता है। तो कहती है राजा कहता है तो ठीक है, तुम बतलाइए कितने दिन की अवधि मांगती हो, उतने दिन के बीच में आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो फिर तो हम तुमको रानी बनाएंगे। द्रौपदी कहती है एक माह की अवधि लेते हैं हम, एक माह की अवधि में हमारे पति नहीं आए तो चाहे हम जल के मर जाए, आप घात करके मर जाए, कैसे मर जाए, लेकिन हमारा जो शरीर का हो, पर एक माह तक आप हमारे ऊपर उंगली नहीं बढ़ाना। अब वह राजा अपनी रानियों को सौंप देता है और कहता है कि इनकी अच्छी पाहुन गति करो। द्रौपदी वहां यहां क्या देखते हैं, जब सैयद जब नहीं है, सेजन तक नहीं है, अर्जुन भीम से कहते हैं, बड़ी भाई से कहते हैं, माता को मालूम होती है, सहदेव को, नकुल को होती है, अब तो सारे समझ गए कि ये तो किसी ने मैं सैया के उठा दे गया, हरण कर लिया। तत्काल नारायण के लिए पता देते हैं, नारायण से बात हो ही रही थी पांचों पांडवों की कि ऐसा कौन है जो ऐसा हरण कर ले गया द्रौपदी का, मैं सैया के उठाने गया, अब अपन को किस प्रकार सोच ले, तब अपन उससे युद्ध करें लड़े। और इतने में नारद जी जाके पहुंचते हैं। नारद का क्या काम था? नारद का यही काम था, दो ही पले तो जैसा तेल और तुम नाचो हम देखें खेल। नारद जी का जो ही काम था, यहां कह भाई चोर से चोरी कर लो, वहां साहस कह रहे हैं कि वो चोर आएगा तुम जगते रहना, इसलिए कहते हैं। यहां भी कहते हैं आदमी, कई जने जो दोगलियाई करते हैं आदमी कहते हैं तुम तो नाराज हो रहे हो, यहां भी कहने लगती है। तो कहा कि द्रौपदी तो मैंने धात की खंड जीत में वो राजा का नाम मैं उड़ गया हूं अभी फलाने राजा के महल में देखा है। अब बताओ अब ऐसी क्या क्यों अपने चुटक भाई क्यों द्रौपदी तो बड़ी दुखी है प्राण त्याग हूं तत्काल तैयार है पर द्रौपदी ने नियम लिया है तो मेरे पति अवश्य आएंगे जब तक एक महीना तक पति नहीं आए तो मैं जीवित रहूंगी फिर इसके बाद मेरा मरण हो या कुछ हो। नारायण कहते चलो नारायण को भी भरोसा है क्यों है भरोसा जिसका स्वजन समार है काज मानन पठवे पावे राज उनका स्वज ऐसा था कि जरा संध तो घेर के पीछे आ रहा था लेकिन वे समझ के किनारे आते हैं तो देवों ने समुद्र के बीच में द्वारका रच दी थी ऐसा स्वयं थावन का इसलिए उनको विश्वास था। पांचों पांडव और नारायण जाके समुद्र किनारे दमन समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं कैसे बैठ जाते हैं सारे वस्त्र अलग करके और कांच की सैया पर बैठ जाते हैं कौन को जाप करेंगे पंच पंडे की सेवा और किसका जाप करेंगे पन्ने की का आराधन कर रहे हैं और बैठे हैं। एक दिन हो गया दूसरे दिन बेला का अभ्यास हो गया तीसरे दिन तेरा का अभ्यास मौका आता है तब देव आता है और पूछता है कि तुम कैसे बैठे भाई किस लिए भूखे प्यासे अन्न जल छोड़े हो कहा एक सती के रूप में अत्यंत कष्ट अत्यंत दुख उसके कष्ट निवारण के लिए हम अन्न जल